ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रविधि पर आधारित लैंगिक हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा से पारित। सोशल मीडिया और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कानूनी दायरे में लाने पर सांसदों ने दिया जोर। निर्धारित समय पर नीति कार्यक्रम और बजट प्रस्तुत न करने वाले 23 स्थानीय निकायों से संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने मांगा स्पष्टीकरण। उच्च शिक्षा की शैक्षिक गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक कैलेंडर क्रियान्वयन में। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों के अमेरिकी नागरिकता पाने के अधिकार को बरकरार रखने का अमेरिकी सर्वोच्च अदालत का फैसला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा ने प्रविधि पर आधारित लैंगिक हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। सांसद रेणु चंद द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प प्रस्ताव में प्रविधि के माध्यम से होने वाली लैंगिक हिंसा की रोकथाम, नियंत्रण तथा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और न्याय तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नीतिगत, कानूनी और संस्थागत व्यवस्था कर उसके प्रभावी क्रियान्वयन की बात कही गई है। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री द्वारा व्यक्त प्रतिबद्धता के आधार पर इस संकल्प प्रस्ताव को प्राथमिकता के साथ लागू करने का सरकार को निर्देश किया। उन्होंने इसके क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक 3 महीने में राष्ट्रीय सभा के समक्ष प्रस्तुत करने का भी निर्देश किया। इससे पहले चर्चा में उठे प्रश्नों का उत्तर देते हुए महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री सीता वादी ने कहा कि लैंगिक हिंसा की रोकथाम और उन्मूलन के लिए अतिरिक्त प्रावधानों सहित एक समेकित कानून तैयार करने के उद्देश्य से अवधारणा पत्र तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित कानून में डिजिटल हिंसा की रोकथाम को प्रमुख विषय के रूप में शामिल किया गया है तथा इसे और परामर्श के लिए अर्थ मंत्रालय भेजा गया है। चर्चा में भाग लेते हुए सांसदों ने कहा कि डिजिटल माध्यमों से होने वाली लैंगिक हिंसा लगातार बढ़ रही है और इससे निपटने के लिए तत्काल कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था की जानी चाहिए। सांसदों ने यह भी कहा कि इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच तेजी से बढ़ने के बावजूद डिजिटल साक्षरता के अभाव में महिलाएं और किशोरियां हिंसा का शिकार हो रही है, इसलिए विद्यालयी पाठ्यक्रम में डिजिटल शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए। आज की बैठक में सांसदों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि सरकार नेपाल और भारत के बीच सीमा संबंधी समस्याओं का समाधान ऐतिहासिक संधियों, नक्शों और तथ्यों के आधार पर कूटनीतिक माध्यम से करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नेपाल भारत द्विपक्षीय तकनीकी समिति अधिकांश क्षेत्रों की सीमा निर्धारण प्रक्रिया पूरी कर चुकी है, लेकिन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी और सुस्ता क्षेत्रों का सीमांकन दोनों देशों की तकनीकी टीमों द्वारा अभी किया जाना बाकी है। मंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों से संबंधित प्रमाण और नक्शे नेपाल के पास उपलब्ध है तथा सरकार इन्हीं प्रमाणों के आधार पर द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से भारत के साथ मतभेद सुलझाना चाहती है। सांसद बिष्णु बहादुर विश्वकर्मा के प्रश्न का उत्तर देते हुए परराष्ट्र मंत्री खनाल ने कहा कि जिन क्षेत्रों का सीमांकन शेष है उन्हें छोड़कर अन्य क्षेत्रों में सीमा माप से संबंधित तकनीकी समिति अपना काम कर रही है। परराष्ट्र मंत्री खनाल ने यह भी कहा कि मुस्तांग जिले में यूरेनियम खनिज होने के कुछ प्रारंभिक अध्ययन और संकेत मिले हैं तथा इस संबंध में आगे का अध्ययन और अन्वेषण खनिज एवं भूगर्भ विभाग के माध्यम से किया जाएगा। विशेष शून्य तथा अन्य समय में सांसदों द्वारा उठाए गए विभिन्न विषयों का उत्तर देते हुए परराष्ट्र मंत्री खनाल ने कहा कि सरकार संविधान, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्थापित सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए सुशासन और आर्थिक समृद्धि को प्राथमिकता दे रही है। बैठक में सांसद बिष्णु बहादुर विश्वकर्मा के प्रश्न का उत्तर देते हुए संस्कृति, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री खड़गराज पौडेल ने कहा कि कालीकोट के सुंथ राली विमानस्थल के संचालन में सबसे बड़ी समस्या यात्रियों की कमी की संख्या है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि स्थानीय निकायों और वायुसेना सेवा निगम के बीच समन्वय स्थापित कर नियमित यात्रियों की सुनिश्चितता होती है तो सरकार वहां आवश्यक जनशक्ति, संचार उपकरण और अन्य तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक के दौरान सांसदों ने वर्षा ऋतु शुरू होने के साथ देश के विभिन्न भागों में बाढ़, भूस्खलन और जलभराव की समस्याएं बढ़ने का उल्लेख करते हुए सरकार से समय रहते बचाव, सुरक्षित आवास तथा राहत की तैयारी और प्रभावी प्रबंधन करने की मांग की। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल ने आकस्मिक विशेष शून्य समय में सांसदों द्वारा उठाए गए विषय पर संबंधित मंत्रियों को जवाब देने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1:15 बजे के लिए बुलाई गई है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने आर्थिक वर्ष 2083-84 की वार्षिक नीति, कार्यक्रम और बजट निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थानीय सभा में प्रस्तुत न करने वाले 23 स्थानीय निकायों से स्पष्टीकरण मांगा है। मंत्रालय ने आज पत्र जारी कर संबंधित गांव पालिकाओं और नगर पालिकाओं को 3 दिनों के भीतर बजट निर्माण प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा देरी के कारणों का स्पष्ट विवरण भेजने का निर्देश किया है। मंत्रालय ने कहा कि उसके पोर्टल द्वारा दर्ज विवरण और प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर यह पाया गया है कि कुछ स्थानीय निकायों ने अब तक आर्थिक वर्ष 2083-84 का बजट कानून में निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा में प्रस्तुत नहीं किया है। इसी कारण उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही मंत्रालय ने स्थानीय निकायों से आषाढ़ माह के अंत तक बजट पारित कराने में सुविधा के लिए स्थानीय सभा की आगामी कार्यसूची भी मंत्रालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। कानूनी व्यवस्था के अनुसार स्थानीय निकायों को आगामी आर्थिक वर्ष का बजट आषाढ़ 10 तक कार्यपालिका से स्वीकृत कर सभा में प्रस्तुत करना तथा आषाढ़ माह के अंत तक उसे पारित करना अनिवार्य है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने उखलढुंगा के चंपा देवी गांवपालिका के तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम प्रसाद सुवेदी सहित 2 व्यक्तियों के विरुद्ध 18,50,000 रूपये के भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। आयोग के प्रवक्ता सुरेश न्योपाने द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सुवेदी भक्तपुर के मध्यपुर ठीमी 6 स्थित शीरिस कंस्ट्रक्शन तथा कंपनी के संचालक प्रकाश ना छीरिंग राय के विरुद्ध विशेष अदालत काठमांडू में मामला दायर किया गया है। आरोप है कि आर्थिक वर्ष 2077-78 में पलापू पेयजल योजना के ठेका समझौते को रद्द कर कंपनी को काली सूची में डालने संबंधी निर्णय का पालन नहीं किया गया, साथ ही बैंक गारंटी की राशि का गबन कर भ्रष्टाचार किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि उच्च शिक्षा की शैक्षिक गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित, योजनाबद्ध और प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक कैलेंडर विकसित कर लागू किया गया है। आयोग ने विश्वविद्यालयों की शैक्षिक गतिविधियों को एकीकृत और कैलेंडर आधारित बनाने के उद्देश्य से सभी विश्वविद्यालयों के समन्वय से राष्ट्रीय शैक्षिक कैलेंडर लागू किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्म के आधार पर नागरिकता के संवैधानिक अधिकार को बरकरार रखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें अवैध रूप से रह रहे या अस्थायी वीजा पर अमेरिका में मौजूद लोगों के अमेरिका में जन्मे बच्चों को स्वतः नागरिकता देने की व्यवस्था समाप्त करने का प्रयास किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से दिए गए फैसले में कहा गया है कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत अमेरिका में जन्म लेने वाला लगभग हर बच्चा अमेरिकी नागरिक है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति कार्यकारी आदेश के माध्यम से संविधान द्वारा प्रदत्त इस अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रविधि पर आधारित लैंगिक हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा से पारित, सोशल मीडिया और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कानूनी दायरे में लाने पर सांसदों ने दिया जोर, निर्धारित समय पर नीति कार्यक्रम और बजट प्रस्तुत न करने वाले 23 स्थानीय निकायों से संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने मांगा स्पष्टीकरण, उच्च शिक्षा की शैक्षिक गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक कैलेंडर क्रियान्वयन में, और संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों के अमेरिकी नागरिकता पाने के अधिकार को बरकरार रखने का अमेरिकी सर्वोच्च अदालत का फैसला। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।